आज की मुरली याद है किसी को? चलो सवेरे पहुंचो जरा। शुरुआत थी लक्ष और लक्ष्य, अब याद आएगी ना? तो सोचो, बैठा हो इनको, बैठा हो बूढ़ी माता को। लक्ष्य और लक्षण एक बहुत अच्छी पॉइंट थी, क्योंकि जनवरी की ये मुरली है। आप देख रहे होंगे बाबा एक एक दिन छोड़ के आता है, शायद 7 को आया, 8 को आया, फिर 10 को आया, ऐसे कुछ चलता था। भट्टियां या कुछ होती थी, छोटे छोटे प्रोग्राम यही सब आते थे बाबा। 77 ऊपर हो गया था, 74 में ये हॉल बन गया था अपना। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, स्मृति दिवस मनाते हो अब क्या मनाओ? स्मृति स्वरूप दिवस। बहुत अच्छी बात है ये, स्मृति से हमारे अंदर समर्थी आती है। और बोलो, भक्ति के संस्कार तो नहीं है? कौन कौन से? मांगना, चिल्लाना, हाँ वो बाद में, 3 चीज थी, मांगना, चिल्लाना, पुकारना, अधीन होना, अधीन होना, अधीन होना। बड़ी गुह्यता से बाबा ने उसको स्पष्ट कर दिया। और सुनो, रास की बात थी बहुत अच्छी, महाराज। और बोलो, हाँ और बोलो, हैं? तीन प्रकार के देखे बच्चे, और बोलो भाई, बोलो, हैं? जन्म सिद्ध अधिकार क्या? प्रारब्ध। क्या याद करो? तकदीर की तस्वीर। बहुत अच्छी वही ये बात थी, क्योंकि हमारा भाग्य श्रेष्ठ भाग्य, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे याद करना है। हम कुछ प्रैक्टिकल बातों पर ही चर्चा करेंगे। जिसकी मनोस्थिति श्रेष्ठ हो जाती है, परिस्थिति उसके लिए, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, बल बन कर आती है। परिस्थिति कईयों को बिल्कुल खत्म कर देती है, और कईयों को परिस्थिति बल देने वाली होती है। एक छोटा सा उदाहरण ले लें, आप किसी संगठन में रहते हैं, वहाँ आपको 2-4 लोग कुछ कुछ बोलते हैं। ये एक सिचुएशन लें आप, कईयों का क्या हाल होगा? यहाँ तो लोग बहुत बोलते हैं, हमारी स्थिति बिगड़ गई, चलो यहाँ से, बहुत बोलते हैं यहाँ तो, चलो यहाँ से। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थ थी वो क्या सोचेंगे? अब सोचो आगे, संस्कार मिलन करना है। बहुत अच्छा, और बोलो, परिस्थितियों में भी स्थिति को अचल अडोल रखना है। और बोलो भाई लोग, हर एक का पार्ट अलग अलग है। साक्षी, आज भी साक्षी की बात थी, तो जो अच्छे पुरुषार्थी हैं वो सोचेंगे इसी में मुझे महान बनना है। तेने बहुत अच्छी बात सुनाई कि कोई व्यक्ति सुसाइड करने जा रहा है, तो वो सोच रहा है, ट्रेन के पास खड़ा है, ट्रेन आ रही, उसे डर भी लग रहा है, डर भी लगता ना मरने से, मरने तो गए पर डर भी लग रहा है। पीछे से उसको हंसने की आवाज आई, कोई लेडी हंस रही है, उन्हें देखा कौन, कोई दिखता तो नहीं है, उसको आभास हुआ कोई तो है। कहा तुम कौन? कहा मैं तुम्हारी किस्मत, तुम्हारे साथ ही चलूंगी, तुम मर जाओ या जिंदे रहो इससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। लोग सोचते हैं मर के सुखी हो जाएंगे, होते हैं सुखी? आज मुझे कोई एक समस्या पूछने आया, कोई भगवान को बहुत अच्छी भक्ति करने वाला, उसके घर में एक लड़की ने जन्म लिया, लड़की ने जन्म लिया इतनी सी, और अब वो 10 साल की हो गई, बिल्कुल आप समझ सकते हैं कुछ नहीं उसमें, न खड़ी हो सकती न उसको समझ है, कुछ भी नहीं। तो ये जो भक्ति करता है था बहुत, इसको भगवान से विश्वास उठ गया है, भगवान भी क्या है मुझे कैसी लड़की दी है, 4 लाख तो खर्च कर चुका होता, पता नहीं कितने करेगी। मैंने जो भाई आया था मैंने कहा उसको बताओ कि तुमने इसके 20-25 लाख लिए थे पिछले जन्म में, दिए नहीं थे, लेने आई है, जब पूरे हो जाएंगे तुम्हें रोता छोड़ के चली जाएगी, समझ गए ना। कर्मों की गति को अब हमें बिल्कुल स्मृति में रखना है, स्मृति स्वरूप दिवस बनाना है, पक्का कर दें जिसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मों का ही परिणाम है, बिना कारण के कुछ भी हो नहीं रहा। मेरे साथ तेरे इसके उसके संबंधी कोई भी हो, जब मनुष्य पाप करता है तो वो बड़ा खुश होता है ना, बहुत खुश होता है, इससे 10 लाख का माल दिया, देने नहीं छोड़ो, 10 लाख बचेंगे अपने, उसे पता नहीं कि 25 देने पड़ेंगे। कर्म के फल से कोई भी बच नहीं सकता, कोई बुरा बोल के दूसरे की स्थिति बिगाड़े उसकी बिगड़ेगी ही, इसलिए कर्म हमें श्रेष्ठ करने हैं, पुण्य कर्म हमारी बहुत बड़ी पूंजी है, ये हमें बहुत याद रखना है। भक्ति में पुकारते किसमें है, आज बाबा ने क्या कहा, पुकार है क्वेश्चंस, क्या क्यों कैसे क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत लोग ज्ञान में आए हैं तो दूसरों को देख देख के परेशान हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये भूल गए हम यहाँ क्या करने आए हैं। पक्का कर दें सभी भाई बहन इसको, कौन क्या कर रहा है, बाबा सोचता है ऊपर बैठ के कुछ, क्यों नहीं सोचता, उसके तो बच्चे हैं, उसे सोचना चाहिए ना, परेशान भी होना चाहिए, जैसे माताएं परेशान होती है अपने बच्चों को देख के, तो शिव बाबा को परेशान होना चाहिए या नहीं, नहीं होता है वो, क्यों, पीछे आ गई थी मुरली में, प्रारब्ध की गति भी बड़ी गहन है, जो जिसको मिलना है उस अनुसार उसको पुरुषार्थ करने की उमंग है, और लोग छोड़ के जाते हैं बाबा को, 10 साल 20 साल भी चल के छोड़ के जाते हैं, लोग आश्चर्य करते हैं क्यों छोड़ रहे हैं, बाबा को कोई आश्चर्य नहीं होता, जितना इनको भाग्य लेना था ले लिया, छुट्टी पूरा हो गया, उतना ही लेना था उन्हें, उससे ज्यादा मिलना ही नहीं है ना, तो प्रारब्ध भी पुरुषार्थ करा रही है, ये हम साक्षी होके देख सकते हैं, इसलिए क्वेश्चंस नहीं, जो कुछ हो रहा है वही, बोलो वही, वही सत्य है, साक्षी भाव अपनाना ही होगा, आने वाला समय अति विकराल होने जा रहा है, जिस दिन भी खेल बिगड़ गया, संसार का खेल इस भाषा में के हाथ से निकल गई ना बाजी, किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि पाप भी बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ रहा है, पाप भी अंतिम सीमा पर जा रहा है, हर चीज में गिरावट आ गई है, भारत में जो नहीं था वो पिछले 5 साल में हो गया है, एक कन्या मिली कहा भाई मैं तो कॉलेज में हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन मैं अकेली ऐसी लड़की हूँ जिसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, बाकी सबके बॉयफ्रेंड हैं। 5 साल में दुर्गति हुई है, माँ बाप चिंता कर रहे उधर, वो पेशेंट बन गए। हमारी लड़की रात को 12 बजे आती है, लड़की को कोई चिंता नहीं, कभी पाप बढ़ा हुआ है। तो हम सब भी अब किस चीज को महत्व देंगे? श्रेष्ठ स्थिति को। किसी के भी कारण अपनी स्थिति को बिगाड़ना समझदारी नहीं है, चाहे वो आपके बच्चे ही क्यों ना हो। काम भारी है, थोड़ा काम भारी है, माताएं सोचेंगी ये काम सबसे भारी है, स्थिति बिगड़ती है। परंतु अगर स्थिति बिगड़ी तो परिस्थिति और बिगड़ जाएगी। इसलिए अगर परिस्थितियों को ठीक करना है तो स्थिति न बिगड़े इस पे बहुत ध्यान देना है। एक भाई ने फोन किया, ये परिस्थिति आ गई है बहुत। मैंने कहा सवेरे उठ के योग करते हो, पल्ली में जाते हो, दो उत्तर मुझे दो कि ना भाई जाता नहीं, अब परिस्थिति इतनी है उठने को मन नहीं करता। तो मैंने कहा मुरली ने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? परिस्थिति आई उनका समाधान ही अमृत वेला योग और बाबा की मुरली है। पहली ये बात पक्का कर दे जीवन में, वही छोड़ दे तो बाबा की नजर भी हट गई ना। सवेरे बाबा की नजर अपने हर बच्चे पर पड़ती है, और कोई परिस्थितियों में सवेरे सो गए और फिर कहेंगे बाबा मदद नहीं करता। बहुत लोग नाराज होते हैं बाबा से, बाबा मदद नहीं करता, और बाबा क्या कहता है? मैं तो मदद करता हूँ, तुम सोए रहते हो। ऐसा हो नहीं सकता, बिल्कुल अच्छी तरह से जान लें, ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा अपने बच्चों को मदद न करे। हो सकता है? आप कर सकते हैं ऐसे? आपके बच्चों को कष्ट हो और माँ मदद न करे, हो सकता है? कोई माँ है दुनिया में ऐसे? बच्चा कितना भी नालायक हो, चाहे रोज माँ से लड़ाई करता हो, फिर भी उसको मदद करेगी। और माताएं या पिता आजकल के वो तो बहुत नीची स्थिति में है। भगवान तो प्यार का सागर, सबके लिए कल्याणकारी, सबको सुख देने वाला, उसको हम समझने की कोशिश करें। उसको ज्ञान से नहीं जाना जा सकता, उसको जाना जा सकता है कैसे? बोलो, कैसे जाना जा सकता उसको? योग से। केवल किसको बाबा को संपूर्ण रूप से जानना हो वो योगयुक्त हो। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा अपने किसी बच्चे को मदद न करे। मैं आपको उसकी मदद का एक अनुभव सुना दूं, या मैंने शायद पहले भी सुनाया हो। उड़ीसा की एक कन्या, 11वीं की इसकी परीक्षा हो रही, मैं वहाँ भट्टी के लिए गया। तो उसका पापा उसको कहता है परीक्षा आ रही है, तुम भट्टी में न जाओ। वो कहे मैं तो भट्टी करूंगी। भट्टी की उसने, हमने बाबा का आह्वान सिखाया भट्टी में, कोई भी समस्या हो जाए बाबा को बुलाओ। अब उसका था इंग्लिश का पेपर, वो इंग्लिश में बहुत कमजोर थी। जब इंग्लिश का पेपर हाथ में आया तो वो तो जैसे बिल्कुल नर्वस हो गई, अंधेरा आ गया आंखों के सामने, कुछ याद नहीं। अब पापा क्या कहेंगे? मुझे कहा था भट्टी न करो, मैंने फिर भी भट्टी की तैयारी नहीं की, अब मुझे कुछ याद नहीं है, मैं तो फेल हो जाऊंगी। 2-4 मिनट में उसे जरा शांति मिली, मन को होश आई, वो नॉर्मल हुई, और उसने याद किया कि भट्टी में बताया था बाबा का आह्वान करो। कहा उसने बाबा को, कहा बाबा, मीठे बाबा, आ जाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मेरी मदद करो। बोलो कि भगवान बहुत सुनता है, खुद अनुभव सुनाया मुझे। शांति वन में आई बाबा से मिलने, फिर तो कहा मुझे ऐसा लगा पीछे कोई बैठा है मेरे और मुझे कह रहा है बच्ची लिखो। कहा वो बोल रहा है, मैं लिख रही हूँ। और नंबर आ गए 68। उसका पापा भी हैरान, ये तो फेल होने वाली थी, 68 नंबर कैसे लाई, तुम नकल की थी क्या? कहा नहीं, नकल नहीं की, मैंने बाबा का आह्वान किया था। तो ऐसा हो नहीं सकता कि बाबा अपने बच्चों को मदद न करे, मदद लेनी आनी चाहिए। तो बहुत ध्यान देंगे अब स्मृति स्वरूप होने पर। बाबा ने हमें बहुत स्मृतियां दिलाई हैं, ऐसे तो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं स्मृति स्वरूप होने पर हम कोई भी 5 स्मृतियां चुन लें, उनका स्वरूप बने। बोलो आप, प्रैक्टिकल चर्चा जिसको करना है, और जो पुरुषार्थ की सबसे सरल विधि है, पहली, मैं कौन हूँ? नहीं, आत्मा नहीं, वो तो बच्चे हैं आत्मा, आप बड़े हो गए। कौन हूँ मैं? आज मास्टर सर्वशक्तिमान की बात थी, मैं पहले दूसरी लेता हूँ जो मुझे ख्याल आई। मैं हूँ इष्ट देवी, इष्ट देव, और इष्ट देवों का कर्तव्य है सबको सुख देना। स्मृति स्वरूप अर्थात अब मैं इस देवी हूँ तो इसका हम स्वरूप बन जाए, केवल याद नहीं करेंगे मैं इस देवी देव हूँ, इसका स्वरूप है हम सुख देने वाले हैं। इस देव देवी के मुख से जो वचन निकलेंगे वो क्या होंगे? वरदान, दूसरों के विघ्न नष्ट करने वाले। अब हमें ये अपना स्वरूप बनाना है, पहली प्रैक्टिस। आज कहा शेर अगर परेशान हो जाए इस चींटी को कैसे मारूं, एक चींटी काट रही है शेर को, अब चींटी तो शेर को दिखेगी भी नहीं, अब वो काट रही है ऐसी जगह पूछ पे कहीं, अब वो क्या करे, वो हिला रहा है लेकिन चींटी तो गिरती नहीं, अब वो दुखी हो जाए इस चींटी को कैसे मारूं, तो क्या कहेंगे शेर को लोग? बोलो क्या कहेंगे? अब सोचो कौन है हम? मास्टर सर्वशक्तिवान, अर्थात इसका अर्थ इस संसार में बहुत बहुत शक्तिशाली शिव की शक्ति। बाबा ने माता को क्या नाम दिया, केवल नाम ही है या कुछ और भी है इसमें? शिव की शक्ति हूँ मैं, इन शब्दों में याद करो, कौन हूँ मैं? शिव की शक्ति, और शिव की शक्ति क्या कर सकती है? सोचो, सर्वशक्तिवान है वो, उसकी शक्ति शास्त्रों में भी लिखा, अगर उसकी नजर टेढ़ी हो जाए तो सातों सागर थर्राने लगते हैं। रामायण में लिखा है ना, राम के रूप में जब सागर उसे जगह नहीं दे रहा है तो राम को गुस्सा आता है, अग्निवान चढ़ा लेता है, अब तुम्हें नष्ट कर देता हूँ, तब सागर देवता निकल के बाहर आ जाता है, मैं आपकी रचना हूँ महाराज। तो दिखाया शास्त्रों में उसकी महिमा, हम हैं शिव की शक्ति। याद करो, परिस्थितियाँ हमारे सामने चींटी के समान है, छोटी छोटी बातें हमारे सामने कुछ नहीं है, सबसे ज्यादा परेशान किसी को करती है छोटी छोटी बातें। बातों से बचना बहुत मुश्किल होता है लोगों को, इसने मुझे ये कह दिया, कहने वाला खुश, सुनने वाला सारी रात मनन कर रहा है। वैसे माताएं कहे कि हमसे मनन आता नहीं करना, और कोई कुछ बात कह दे तो सारी रात मनन चलता है, चलता है या नहीं? तो मनन शक्ति है या नहीं? है, सबके पास मनन शक्ति है। तो ऐसे मनन करना, मैं शिव की शक्ति हूँ, मास्टर सर्व शक्तिवान, ये जीवन की बातें, ये घरों की परिस्थिति कुछ भी नहीं है, हम इन्हें संकल्प से ही ठीक कर सकते हैं। प्रैक्टिस करेंगे सभी, हम बहुत सारी बातों को संकल्प से ही ठीक कर सकते हैं। मैं एक बहुत अच्छा अनुभव सुनाना चाहता हूँ, है तो पर्सनल, सब उसको पॉजिटिवली लेंगे, पर देखो बाबा कैसे हमें मदद करता है। मुझे जाना था चंद्रपुर महाराष्ट्र में बच्ची के लिए। रोज न्यूज में आ रहा था टेम्परेचर है 49, 48.8, 50 तक टेम्परेचर जा रहा था। तो मैं कई बार जा चुका हूँ, गर्मी वहाँ बहुत होती है। इस बार मैंने बाबा को कहा, प्रकृति से भी बातें की, कि जब मैं वहाँ पहुँचूँ तो टेम्परेचर 40 तो कर देना, हम ये तो नहीं जीरो कर दो, प्रकृति के अपने नियम भी हैं, पर कम से कम 40 तो कर देना। मैं एक हफ्ता पहले से ये दोनों काम करने लगा था, बाबा को भी और प्रकृति को भी। दो अनुभव इस बार के बहुत अच्छे हुए। तो नागपुर में प्लेन उतरना था, तो जब प्लेन उतरता है तो वो अनाउंस करते हैं कि नीचे का टेम्परेचर कितना है, तो उन्होंने अनाउंस किया नीचे का टेम्परेचर 40 है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि बाबा ने सुन लिया। फिर हमने कहा भट्टी हो रही है, बहुत सारे भट्टी में तो सब इकट्ठे बैठते हैं, और एक कॉलेज में थी, वहाँ कोई कूलर वूलर तो होते नहीं, कमरों में रहने के कॉलेज का हॉस्टल मिला था, तो सब भाई बहनों को गर्मी तो लगेगी। तो मैंने फिर प्रकृति से बात की, और तुम कुछ और भी कर दो, इसे 35 पे ले आओ। और जिस दिन हम पहुंचे रात को, उसी दिन बरसात हुई अच्छी, और वो 35 पे आ गया, 32 तक आ गया। सबको भट्टी का बड़ा आनंद रहा। 6 दिन हम वहाँ रहे, बीच में थोड़ी सी गर्मी होती थी, 40 तक टेम्परेचर पहुँचता था, फिर बरसात आती थी, वो 30-32 पे आ जाता था। तो 6 दिन बहुत अच्छा रहा। तो मुझे लगा कि देखो हम अपने को भूले रहते हैं, अगर हम स्मृति स्वरूप हो जाएं, तो स्मृति से आत्मा में आती है समर्थी। समर्थी हमारे पास ही बहुत समर्थी है, पावर है अपनी सभी समस्याओं को हल करने की, सभी इस बात को पक्का कर रहे हैं। और एक प्रयोग छोटा सा करेंगे, संकल्प शक्ति का प्रयोग। एक छोटा सा विचार ले लें आप सभी यहाँ से जो भी आए हैं, कि हमें अपने कई काम, रोज के कई काम संकल्प शक्ति से ही करने हैं, संकल्प से करने हैं। परेशान होने की बजाय हमें वैसे ही संकल्प करने हैं। और इसका एक छोटा सा तरीका अपनाना, मैं सभी को एक चीज बहुत सिखाता हूँ आजकल, आप सब जो यहाँ बैठे हैं वो भी सीख लें। हमारे हर संकल्प में क्रिएटिव एनर्जी है, क्रिएटिव एनर्जी का हिंदी है निर्माण शक्ति है, रचने की शक्ति। हर संकल्प हमारा कुछ ना कुछ रचता है, खाली नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प है तो व्यर्थ रचेगा, समर्थ संकल्प है तो समर्थ रचेगा। इसलिए हम वही सोचें जो हम चाहते हैं। जब एक माता ने मुझे कुछ दिन पहले फोन किया कि मेरा लड़का IAS का कंपटीशन ले रहा है। IAS माताओं को पता होना चाहिए, जैसे कलेक्टर बनते हैं, बहुत बड़ी सबसे बड़ी नौकरी है वो भारत की। वो एग्जाम दे रहा है, लेकिन वो डर बहुत रहा है। मैंने कहा तो उसे मुझे बात कराओ, उसने बात कराई। कहा मैंने कहा तुम्हें क्या डर लग रहा है? कहा डर ये लगता है कि कोई लाख बच्चे स्टूडेंट बैठेंगे इस एग्जाम में, और मुश्किल से 400 चुने जाएंगे, सिलेक्शन 400 का होगा, मेरा नंबर कहाँ आएगा? तो मैंने कहा तुमने पहले ही पक्का कर दिया है मेरा नंबर नहीं आएगा, तो परीक्षा क्यों देते हो? हाँ, सुनने लगा मैं इस परीक्षा दे रहा हूँ, मैं बहुत होशियार हूँ और मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, पर मुझे संकल्प परेशान कर रहा है कि कई लाख में से 400 का सिलेक्शन होगा, मेरा नंबर कहाँ आएगा। मैंने उसको कहा तुम ये संकल्प चेंज करो, ज्ञान लिया है का थोड़ा थोड़ा लिया है, मम्मी सुनाती है, मैं भी कभी कभी जाता हूँ। तो मैंने उसे कहा अब तुम आज से ये संकल्प करो कि 4 लाख में से 400 का सिलेक्शन होगा, उसमें एक नंबर मेरा भी है, लिस्ट में देखने लगो ये मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है। तब उसको थोड़ी जागृति हुई कि ये बात तो ठीक है, मैं उल्टा ही सोच रहा हूँ। हर मनुष्य कहीं ना कहीं बहुत कुछ उल्टा सोचता है, अपने अनुभवों के कारण भी सोचता है, कईयों को उल्टा सोचने की आदत भी पड़ गई है। निगेटिव सोचने से हम निगेटिव चीजों का निर्माण करते हैं। हम माताएं घर में खाना बना रही हैं, मेहमान आए हुए 5, खाना बनाते बनाते ये भी सोच रही हैं कहीं कम ना हो जाए, बार बार सोच रही हैं कहीं कम ना हो जाए। क्या होगा? जरूर कम होगा, पता नहीं सबको अच्छा लगेगा या नहीं। ये क्यों सोचे? क्यों ना हम सोचे बाबा के लिए भोजन बना रहे, सबको बहुत अच्छा लगेगा, बाबा का भंडारा भरपूर रहेगा और 10 आ जाए वो भी खा लेंगे। ये सोचने में पैसे खर्च होते हैं? नहीं पैसे खर्च होते ना, तो यही सोचना चाहिए ना। सभी अच्छी तरह से अपने को चेक करें, हम गलत कहाँ कहाँ सोचते हैं। हर व्यक्ति गलत सोचता है, उसे ठीक करेंगे तो बहुत सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। स्मृति स्वरूप में आगे चलो। तीसरी बहुत अच्छी बात जो आत्मा को बहुत जागृति देती है, मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ। इससे विजय की शक्तियाँ इमर्ज हो जाएंगी अंदर, हमारे अंदर ही विजय पाने की शक्ति है। विजय का केवल संकल्प होना चाहिए। मैंने एक ऐसे सन्यासी कहानी पढ़ी जिसका नाम ही लोगों ने रख दिया था बाघ बाबा, शेर बाबा। वो क्या था, शेर के पास चला जाता था, बिल्कुल निर्भय होकर सन्यासी था। देखो यहाँ भी उसने ऊपर कुछ नहीं पहना, एक पैमन पहना है, और शेर को मुक्कों से ही मारते आता था, मुक्कों से। शेर कूद के उसके यहाँ बैठ गया, उन्हें 2 मारे, जैसे शेर गिरा पीछे। निर्भयता, ये शक्ति हरेक के पास है, पर आम व्यक्ति का क्या होगा, सांप दिख गया और वो खुद गिर गए। अब सांप लो खा लो मुझे अच्छी तरह आराम से, मैं तो गिर गई, होगा ना ऐसे। हमारे अंदर विजय पाने की शक्ति है, पहचाने अपनी शक्ति को सभी। जब भगवान कह रहा है कल्प कल्प तुमने माया पर विजय पाई है, तो वो झूठ बोल रहा होगा क्या? हैं? बाबा झूठ बोलता है? स्वीकार करें, भगवान बोल रहा है, परम सत्य है। आज भी था ना, सत्य बाप को बोलो, बहुत अच्छी पॉइंट थी, सत्य बाप को केवल सत्य ही स्वीकार है, बाकी नहीं। कोई पाप करके, कोई झूठ ऐसा वैसा घुमा के और अच्छा बन जाए, वो वहां तक नहीं पहुंचता। बाप परम सत्य है, उसे सत्य ही स्वीकार है, बाकी कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात थी ना। तो मैं विजय रतन हूँ, इसका स्वरूप होगा हमें विजय का नशा। देखो 2 सेनाएं आपस में लड़ रही हूँ, एक को पता हो हमारी जीत होने वाली, तो वो लड़ेंगे भी जीत के नशे में ना। हम भी माया से लड़ेंगे जीत के नशे में। पसंद है क्या? क्या पसंद है? हमारी जीत निश्चित है। माया चाहे कितनी भी प्रबल हो, माया से प्रबल कौन? बाबा नहीं, मैं हूँ। ये संकल्प हमें अपने अंदर करना है, माया अगर पावरफुल है तो मेरे साथ भगवान है, उसे पावरफुल मैं हूँ, ये जीत का नशा जीत के रास्ते को सरल कर देगा। ये है स्मृति स्वरूप होना। और आगे चलें, बोलो कौन सी स्मृति दिलाई? एक भविष्य की स्मृति दिलाई हमें। भाग्य की चर्चा बहुत अच्छी की बाबा ने, और सभी इस मुरली को फिर स्टडी करेंगे। जिन्होंने अच्छी तरह लिखी हो वो उसको स्टडी करना, नहीं तो ले लेना, इसको पढ़ना। तकदीर की तस्वीर, हमारा भाग्य ही कितना सुंदर है। सोचो भाग्य कितना सुंदर है। माताओं के पास इस समय कितने बड़े घर हैं? आपके पास कितना बड़ा घर है जिसमें आप रहती हैं? बोलो एक उदाहरण दो। तीन कमरे है? तीन कमरे का घर है। किसके पास दो कमरे का घर है? किसके पास चार कमरे का घर है? सतयुग में आपका घर कितना बड़ा होगा? बहुत बड़ा माना कितना बड़ा? पूरे पांडव भवन जितना, पूरे आबू जितना। ठीक, जितना आप सोचेंगे उतना ही बड़ा बना लेना। क्योंकि वहाँ जो बाबा कहते हैं ना, तुम भारत के दुनिया के मालिक हो, मालिक होंगे। जितना जिसको चाहिए घेरो और बनाओ, उसमें सुंदर बाग बगीचे, उसमें खेती पानी सब कुछ, घूमने फिरने, अपने पुष्प विमान खड़े करने की जगह, सोने के चमकते महल, माताओं की साड़ी में भी हीरे जड़े होंगे। सोचो भाग्य, भाग्य सोचो। कपड़े भी ऐसे होंगे जो महले नहीं होंगे, निकाल रहे हैं अभी, मैंने पढ़ा एक दिन विज्ञान भी कुछ ऐसे वस्त्र निकाल रहा है जो लंबा समय महिला ही नहीं होगा। सीता के लिए दिखाया ना अनुसुईया ने, उसे साड़ी दे दी थी जो कभी मेरी नहीं होती थी। ये रहस्य है कुछ। कितना बड़ा भाग्य होगा हमारा जहाँ किसी को दो युग तक कमाने की चिंता नहीं। और सब जानते हैं, भाई बैठे हैं, माताएं भी, अपने घर को चलाने के लिए कितनी मेहनत है आजकल। उसमें भी बचत करो, यहाँ खर्च न करो, वहाँ बच्चों की पढ़ाई, शादियाँ, ये वो कम करो, कितनी टेंशन परिवार चलाने के लिए। 2500-3000 साल तक कोई चिंता नहीं। भाग्य की तस्वीर को देखो अपनी। देह में रोग होगा, घुटनों में दर्द होगा, अब क्या क्या है देखो सबको। किसी का भी शरीर ऐसा नहीं जो अच्छा हो, कोई ना कोई लगा हुआ पीछे, ड्राई फ्रूट खाते रहो, पता है ना ड्राई फ्रूट गोलियां, लाल पीली गोली खाते रहो। सतयुग सोचो कैसा होगा। हवाओं में भी सुगंध होगी, घूमेंगे तो सुगंधित हवा, बारिश होगी तो ऐसा लगेगा इत्र छिड़क दिया सारे में। इसलिए वर्णन है इंद्र की राजधानी में रोज शाम को इत्र छिड़का जाता था। वो इत्र और कुछ नहीं था, रोज शाम को बरसात होगी थोड़ी सी और उससे ऐसा ही हो जाएगा, सिंह छिड़क दिया गया है सारे स्वर्ग में। ऐसा सुंदर भाग्य बाबा हमारे लिए लेकर आया है। उसकी स्मृति स्वरूप रहना माना बहुत आनंद में, बहुत खुशी में, भविष्य का ही दिखता रहेगा सब कुछ, वर्तमान भूल जाएगा। खुशी ऐसी चीज है, भविष्य का नशा ऐसा चीज है जो वर्तमान के कष्टों को भुला देता है। ये स्मृति स्वरूप हमें होना है। और भी जिनके बड़े बड़े पद होंगे उनके तो कहने ही क्या, सत्यु में सिर पर ताज होगा, आनंद ही आनंद छाया होगा, रात दिन से नाइयां बजा करेंगी, दुख की तो कोई बात ही नहीं, वहां तो शब्द ही नहीं होगा। वहाँ न पढ़ाई की टेंशन कन्याओं को, न नौकरी की। कितने समय से कन्याओं ने नौकरी शुरू की भारत में, माताओं को पता है ना, पहले नहीं होती थी, कन्याएं नौकरी नहीं करेंगी। भारत में नियम था, माँ बाप कन्याओं का पैसा खा नहीं सकते, पाप माना जाता था। और अब तो बदल गया ना सब, युग बदल गया, कोई नौकरी टोकरी की चिंता नहीं। ऐसी तकदीर की तस्वीर अपनी बनाए, बहुत आनंद होगा। सोचना यह है, ऐसे सुंदर भाग्य को पाने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, कहीं उलझ कर तो नहीं रह गए हैं, कहीं दूसरों को देखने में इस सुंदर अवसर को तो नहीं बिता रहे हैं। सब चिंतन करेंगे हम अपने संगम योगी श्रेष्ठ भाग्य बनाने के दिनों को कैसे बिता रहे हैं, चिंतन का विषय है। जब प्रभु मिलन का संपूर्ण आनंद मिल रहा है तब हम कैसे समय को पास कर रहे हैं, जब भगवान वरदान बांट रहा है, सब खजाने देने आया है, तब हमने अपनी बुद्धि को कहीं गंदगी से भर के तो नहीं रख दिया, जगह ही नहीं है उसमें, खजानों के लिए जगह ही नहीं बचाई हमने। बुद्धि स्वच्छ करेंगे तो खजानों के लिए, वरदानों के लिए बुद्धि में जगह होगी ना। ये सब चीजें आती हैं बुद्धि में। सब चिंतन करें, मधुबन में आप हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान है ये संसार का, है या नहीं? सर्वश्रेष्ठ, जहाँ भगवान के कदम पड़े, जहाँ उसकी दृष्टि पड़ी, सोचो यहीं आके बैठता था बाबा। मैं जानकी सुनाया करती है, वो सवेरे कभी चल जाती थी ना बाबा कमरे में, बाबा कहता चलो बच्ची मैं बाबा को लेकर आ रहा हूँ, ये बाबा को यही खड़े होकर बाबा सबको दृष्टि देते थे। जब बाबा यहाँ खड़े होते थे इस हॉल में ऐसा लगता था करंट फैल गया, श्री बाबा के आते ही एकदम रौनक हो जाती थी, चमक हो जाती थी इस हॉल में। तो हमारा भाग्य कितना सुंदर है, भगवान को इस धरती पर देखते हैं, अपने भाग्य की स्मृति का स्वरूप बन जाएं। और पांचवी बात यही है, संगम युग पर हमें क्या क्या मिला, सोचना क्या क्या मिला। जो चारों युगों में देखा नहीं जाएगा वो संगम युग पर देखा, जो ज्ञान का प्रकाश चारों युगों में प्राप्त नहीं होगा सर्वश्रेष्ठ प्रकाश मिल गया। हर जन्म में हर मनुष्य अपने लिए या अपने परिवार के लिए रहेगा, और इस समय हमारा जीवन विश्व कल्याण के लिए, भगवान के लिए, हम अपने लिए भी नहीं है, हम केवल अपने परिवार के लिए भी नहीं है, हम संसार के लिए हैं, इसका हम स्वरूप बन जाए। ऐसे महान विचार अपने बनाएंगे तो ये जीवन आनंद से भर जाएगा। कुछ माताओं के सिर पर बोझ बहुत है, इधर नहीं सूक्ष्म माताएं देख रही, सिर पे तो कुछ नहीं है, बाल ही बाल है और तो कोई बोझ नहीं। बोझ जिसने भी जो लिया हो क्या करेंगे उसे, बोझ उठाने वाला कह रहा है मुझे दे दो, पर बहुत लोग देते नहीं, देने के बाद फिर वही चिंतन, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। भगवान को दे दिया उस पर विश्वास नहीं कि दे दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब मेरे बच्चे का क्या होगा। बाबा के हाथों में सौंप दिया माना संपूर्ण विश्वास, उसके हाथों में सौंप दिया जिसके हाथों में जाने के बाद कल्याण का प्रश्न ही नहीं है, कोई मुसीबत आने का प्रश्न ही नहीं है। बड़ी चीज भी आने वाली थी उसको बाबा छोटा कर देगा। बाबा को जानते चलें और इस समय का पूरा फायदा उठाएं। मैं आपको कह रहा था यही लास्ट बात, बहुत अच्छा चिंतन करें। एकांत भी है, बाहर भी घूम सकती है माताएं भी, डर की कोई बात नहीं है, अभी यहाँ तक तो कोई डर नहीं। चिंतन करें बहुत अच्छा कि संगम युग पर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, सब चिंतन करेंगे। ऐसा ना हो ये सुंदर समय छोटी बातों में बीत रहा हो, अब व्यर्थ में समय बिताने का समय नहीं है। जो बुद्धिमान है, जो अपने को समझदार मानते हैं, उनकी समझदारी इसमें ही है कि बाबा सब कुछ देने आया है, हम सब कुछ लेने वाले बन जाएं। कहां हमने अपने को उलझा दिया है। कईयों ने ऐसी जगह उलझाया है जहां उलझने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ चीजों को हमें छोड़ना ही होता है, संकल्पों को छोड़ना ही होगा। सब कुछ चिंता करेंगे, हर चीज की चिंता करेंगे तो जीवन सुखी नहीं होगा। पसंद है? अच्छा चिंतन करें मधुबन में, बाबा का रूम है, शांति स्तंभ है, अब तो गर्मी पूरी हो रही, शाम को भी अच्छा है, बैठ कर भी अच्छा अच्छा योग करेंगे सभी, और यहाँ से ऐसी प्राप्तियां करके जाएंगे जो कब तक काम आए। माताएं उत्तर देंगी, हैं? हाँ, पूरा कल्प ही काम आए, हमारा एक एक विचार पूरा कल्प हमारे साथ चलेगा, एक एक वरदान जो बाबा से हम लेंगे द्वापर युग से भी हमारे साथ काम करेगा। जो कुछ बाबा से भर लेंगे वही हमारी असली संपत्ति, बाकी संपत्ति कोई काम नहीं आएगी। इसलिए लास्ट बात कहता हूँ, धन तो सबका जाने वाला है, धन को अगर पुण्यों में बदल दिया जाए तो पुण्य परमानेंट हो जाएंगे। पुण्य अचल संपत्ति है, जानते हैं ना, चल और अचल, पुण्य संपूर्ण अचल संपत्ति है, धन तो चल है, चाहे वो दिखने में अचल भी हो तो सब चला जाएगा, केवल पुण्य कर्म हमारे साथ चलेंगे। तो सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे, फायदा उठाएंगे। ओम शांति।